ओम शांति। भाई बहनों से निवेदन है, जो पीछे पीछे बैठे हैं अगर वो आगे आ जाएं। आज हम सभी के बीच हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। आप गत 40 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और 35 वर्षों से आप हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में ही आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है। आपके अंदर खास करके गहन राजयोग का अभ्यास और ज्ञान की रुचि, इस रुचि के कारण आप काफी गहन चिंतन में रहते हैं और उन अनुभवों के आधार पर आपने देश विदेश में बहुत सेवाएं दी हैं। वर्तमान आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम आपसे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पाने की विधि, इस विषय पर सुनेंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी।
ओम शांति। कि आप जब भी रोज मुरली सुनते हो तो बाबा रोज देखना मुरली में दो शब्द बोलता है, एक बाबा को याद करो, दूसरा बाबा रोज याद दिलाता है बच्चे वर्षे को याद करो। बाप और वर्षा, ये दो चीजें हैं। तो बाप तो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। साथ साथ बाबा कहता है कि सदगुरु टीचर हमें क्या पढ़ाता है, क्या कहता है, उसको भी जरूर याद करना। तो उसको बाबा कहता है वर्षे को भी याद करना। अभी प्रश्न आता है कि जो भी बाबा के यहां बच्चे बैठे हैं तो सभी को एक जैसा वर्षा मिलेगा, तो वर्षा किस आधार से मिलेगा? फिर कहेंगे पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या वर्षे के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए? आप कहेंगे जैसा पुरुषार्थ वैसा वर्षा, ऐसे कहेंगे। तो पुरुषार्थ भी क्या है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो देखा कि समझते एक बाबा को याद करो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाएगा। क्योंकि स्वर्ग और कलयुग, इन दोनों में अंतर क्या है? वहां भी शरीर रहेगा, सत्युग में भी शरीर रहेगा, यहां भी शरीर है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो कलयुग उसको कहते हैं जहां देखो बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, और किसी को देखो बहुत धन है लेकिन घर में खाने वाले कोई भी नहीं है, किसी के बच्चे बहुत होशियार है पढ़ने के लिए, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लेते हैं लेकिन मां बाप के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए धन नहीं है। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में इम्बैलेंस है, एक है तो एक नहीं, इसका नाम है कलयुग। तो भगवान भाग्य विधाता शिव बाबा आकर के इन तीनों के अंदर बैलेंस कराता है। तो किस आधार से बैलेंस होगा? सत्य उसको कहते हैं संपूर्ण हेल्थ है, निरोगी काया कहा। सत्य उसको कहते हैं जहां हैप्पीनेस है सदा, आत्मा हर्षित है, संतुष्ट है, भरपूर है, हेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और वेल्थ है, संपत्ति भी है, हर प्रकार की संपत्ति होंगी, ये तीनों में समानता है, उसका नाम है स्वर्ग। तो ये कैसे होगा? अपने आप बाबा ऊपर से देगा? इसकी विधि क्या है, कैसे मिलेगा ये? तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा कि बच्चे हेल्थ चाहते हो, शरीर को निरोगी काया बनाना चाहते हो, तो उसकी विधि क्या है, कैसे होगा ये? क्योंकि सृष्टि में ऐसा एक नियम है, इटर्नल एक नियम है, खेती में आप एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगेंगे। अगर उसके अंदर एक नियम भी है, गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं उगेगा, चावल नहीं उगेगा। उसको कहा इंग्लिश में व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोते हो, जो करते हो वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया, बच्चे बाबा ने आके इस सृष्टि पर ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। इस यज्ञ की आप अश्वमेघ यज्ञ कहा, इस यज्ञ के अंदर ये तन स्वाहा करो। जैसे शास्त्रों में कहा कि यज्ञ में दधीचि ऋषि ने यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा किया, अगर यज्ञ में हड्डी डालो तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा ना, तो यज्ञ में स्वाहा क्या करना है, ये शरीर स्वाहा ऐसे नहीं करना है। इस शरीर के द्वारा जो शिव बाबा ने आकर के इस सृष्टि पर जो रुद्र यज्ञ रचा है, अगर इस यज्ञ के आप इस तन के द्वारा जितना सेवा कर सकते हो, ये यज्ञ आपको निरोगी काया देगा। तो उसके कितना सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब बाबा ने और एक बहुत सुंदर बात बताई, संगम पर एक सेकंड अगर आप इस यज्ञ की सेवा करते हो, एक सेकंड का पदम गुना, अर्थात एक सेकंड अगर से कुछ भी करते हो तो एक वर्ष के समान है संगम का, एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो आप पूछो संगम पर इस तन के द्वारा इस यज्ञ की सेवा हमें कितनी करनी चाहिए, कितना जन्म हम निरोगी काया चाहते हैं, हर चीज का मापदंड है, हिसाब किताब है। तो संगम के बाबा ने विधि बहुत दफा बताया, बाबा ने कहा संगम में जो कुछ करते हो एक का पदम गुना मिलता है। फिर भी बाबा ने कहा अगर संगम पर आप एक सेकंड अगर व्यर्थ गवाते हो, 21 जन्मों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक सेकंड नहीं गवाया आपने, 21 जन्मों के प्राप्ति से दूर हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा इस यज्ञ की आप सेवा करना चाहिए जरूर, क्योंकि तन में एक सेकंड भी हम ज्यादा नहीं रह सकते हैं। टिकट आया कोई भी कारण नहीं, एक सेकंड भी रुक नहीं सकते हैं, तो ये तन हमारा नहीं कह सकते आप। ये भी बाबा ने, भगवान ने हमें ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया है। तब कहते हैं आप ईश्वरीय सेवा अर्थ ये तन दिया है, तो ये तन कितना समय कितना घंटे आप ईश्वरीय यज्ञ में लगाते हो, उसका भी हिसाब है। क्यों कि आजकल बहुत भाई बहने कहते हैं हम इतना योग लगाते हैं सेवा करते हैं तो भी बीमारी जाती नहीं है, बीमारी मिटती नहीं है, बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों। तो कायदे नियम हर चीज की नियम है, विधि है, तो उस विधि को जानना चाहिए। तो सारे दिन में 24 घंटे के अंदर ये तन के द्वारा इस यज्ञ की हम सेवा कितना करते हैं, हरेक को अपने आप से पूछना है। तब ये यज्ञ हमें ये वरदान देगा, उसके रिटर्न में इस तन को निरोगी काया बनाएगा। ऐसे नहीं ऊपर से बाबा दवाई भेज देगा आप सिर्फ योग करते रहो, नहीं, विधि है, उसको जरूर जानना चाहिए कि यज्ञ की सेवा कितना करते, ये तन कहां लग रहा है 24 घंटे में, किसकी सेवा में लगा रहे हो, तो वो उसका रिटर्न देगा। अगर भगवान की सेवा में हम ये तन लगाते हैं, तब बाबा ने कहा ये तन निरोगी काया बन जाएगा। और उसका हिसाब बताया संगम का एक सेकंड एक वर्ष के समान है। अभी हर एक अपने आप से पूछ लो, दूसरा एक एक एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा आप देख लो, बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा धन कहां लगाते हो, तो धन के लिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी है कि ईश्वरीय सेवा में धन लगाओ। धन हमारा नहीं, न हम लेके आए थे न ले जा सकते हैं। आपने बहुत दफा मुरली में सुना होगा कि श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स नहीं करना। तो श्रीमत और मनमत क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं उससे आपको समझ में आएगा थोड़े से समय के अंदर। तो एक एग्जाम्पल देखना, धन कहां लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सवेरे मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तन मन धन सेवा में लगाओ, ईश्वरीय सेवा में लगाओ, तो भाई जी ने सुना, सुन करके भाई जी के मन में विचार आया कि आज तन तो नहीं लगा सकते, मुझे नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, तन तो नहीं लगा सकते, मन भी नहीं लगा सकते, जहां तन है वहां सेवा करना, वहां मन भी लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा धन लगा सकता हूं, जेब में देखा 100 रुपया है, तो बाबा ने कहा धन लगाओ, तो चारों तरफ देखता है, सेंटर में बहुत बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी हुई है, तो कहता है खुर्ची की कमी है सेंटर में, तो 100 रुपया जेब में, 100 रुपया में एक खुर्ची ला सकते हैं। सीधा उठ के चला गया मार्केट में, एक खुर्ची ला के सेंटर में रख दिया, तो धन की सेवा हो गया, चलेगा? क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा बच्चे तन मन धन तीनों ईश्वरीय सेवा में लगाओ। सुन करके भाई जी के मन में विचार आया कि तन तो नहीं लगा सकता हूं, मन तो नहीं लगा सकता हूं, धन तो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत दफा हम सुनते हैं लेकिन इसका स्पष्टीकरण समझ में नहीं आता है कि श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स नहीं करो। तो श्रीमत और मनमत किसको कहेंगे? अब बाबा ने मुरली में कहा बच्चे धन लगाओ तन लगाओ, तो आपने मार्केट में जाके एक खुर्ची लाके रख दिया, चलेगा? बताओ, हाँ सेवा किया ना, नहीं चलेगा? तन से नहीं किया, मन से नहीं किया, तो धन की सेवा हो गया। लेकिन याद रखो कि एक चीज है जानना चाहिए, जहां आप सेवा करते व्यवस्था, इस सेंटर के संभालने वाले व्यवस्थापक है, टीचर है, बाबा का श्रीमत मुरली में सुना, उसके बाद टीचर को पूछना चाहिए बहन जी बाबा ने कहा कि ये सेवा करो, मेरे मन में विचार आया मैं कुछ सेवा करूं, तन नहीं लगा सकता हूं, मन नहीं लगा सकता हूं, धन लगाना चाहता हूं। तो बहन जी कहेंगी हां हमारे पास तो बहुत खुर्चियां है, बैठने की जगह नहीं इसलिए मैंने खुर्ची नहीं रखी है, हम और कोई सेवा में लगाएंगे। अगर वो न पूछते हुए आपने सीधा खुर्ची ला के रख दिया तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तब कहा जहां आप कुछ करते हो वहां पूछ के करो, अगर आपके मन में आया आपने लेके आया तो क्या होगा, श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स किया। कोई भी सेवा करते समय वहां जो व्यवस्था करने वाले हैं उनको पूछ कर अगर आप सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है, नहीं तो एक का एक गुना जमा होता है। कभी कहेंगे हम इतनी सेवा करते हैं, सेवा जरूर करते हैं, लेकिन श्रीमत और मनमत इन दोनों का बहुत सूक्ष्म लाइन है, वो जानना चाहिए। कोई भी सेंटर में किसी प्रकार की सेवा करते हो पूछ के करो, निमित्त आत्माओं को पूछ के करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा, नहीं तो एक का एक गुना। सिंपल एक उदाहरण और एक देख लो, अगर आप किसी बैंक में जाओ, दो बैंक है, एक बैंक कहेगा मैं 10% इंटरेस्ट देता हूं, एक बैंक कहेगा 1% इंटरेस्ट देगा, तो आप किस बैंक में रखेंगे? 10% जो देता है वहां ही रखेंगे ना। अगर जाते समय दोनों भाई एक साथ बैंक में गए, एक ही कैशियर के पास 100 रुपया दोनों ने दिया, एक भाई ने एक शब्द ऐड किया, भाई जी मेरा ये 10 साल के लिए रखना, और एक भाई ने सिर्फ 100 रुपया रख दिया, अगर एक साल के बाद लाने जाओ एक को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, एक को कुछ नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा। तो एक शब्द है श्रीमत के अनुसार अगर कर्म करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है, मनमत के अनुसार अगर कुछ भी करते हो एक का एक गुना जमा होता है। ऐसे मन भी, मन सदा हर्षित रहेगा, कैसे रहेगा, अपने आप रहेगा नहीं। आप देखना बाबा कहते हैं जितना ज्ञान सुनते हो ज्ञान का दान करो, ज्ञान का वर्णन करो। कैसे करेंगे आप? उसके लिए एक सहज तरीका बताता हूं कि ज्ञान हरेक सवेरे मुरली सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, किसी को नहीं रहता, हमें भी नहीं रहता है, लेकिन उसके तरीका है, ज्ञान सुनने के भी तरीका है। तो कैसे याद रहे? तो देखो बहुत सुंदर तरीका है, रोज आप मुरली सुनो, सुनते समय ध्यान से सुनते रहना, एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो आप नोट करके जेब में रखना। अगर डायरी में रखेंगे, डायरी एक जगह पर, आप एक जगह पर, तो एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो आप लिख के जेब में रख देना। उसके बाद आप देखो यहां से गए, शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को तो 3 दफा खिलाते हो आप, आत्मा को 3 दफा कैसे खिलाएंगे? 3 दफा सेंटर में जाएंगे, 3 दफा मुरली पढ़ेंगे? समय नहीं है, बहुत बिजी है। सिंपल तरीका, एक पॉइंट जेब में रखा, यहां से जाने के बाद आप नाश्ता करने गए, भगवान ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ जरूर इधर जाता है, ये हाथ कहां जा रहा है? आज मुझे बाबा ने क्या कहा, पढ़ो आत्मा को खिलाया, ये हाथ शरीर को खिलाता है, बस हो गया। फिर देख लो, आप दिन में फिर खाना खाना जाते हो, दिन में खाना टेबल पर जाते, ये हाथ इधर नहीं जाता, ये हाथ इधर ही जाता है, ये हाथ अपने को पढ़ाओ, शरीर को भी खिला रहे हो, आत्मा को भी खिला रहे हो। रात को फिर खाना खाने जाते हो, रात को खाना आते ही आत्मा को भी खिलाओ, याद नहीं रहेगा। जेब में जो रिकॉर्ड निकाल के पढ़ो, रख दो, इतना ही काम करना है। अगर आज की एक मुरली के पॉइंट 3 दफा अगर आप सुनते हो तो हेल्दी माइंड कहा, शरीर को 3 दफा खिलाया। देखो आज बाबा कह रहा था, देखो आप इतने भाई बैठे इधर, आप अपने आप से पूछो, कम से कम 1 साल 5 साल 10 साल ज्ञान में चलते हैं, आप अपने आप से पूछो, सिर्फ 1 महीने के अंदर 1 दिन भी किसी ने गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ, 1 दिन सिर्फ नहीं है, 1 व्यक्ति भी नहीं, 1 महीने के अंदर 1 दिन गुस्सा नहीं किया हुआ कोई है? तो फिर ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हाँ ज्ञान को यूज करना चाहिए। आज बाबा ने कहा क्रोध के बताया, क्रोध कर भारत सोने की चिड़िया थी, धन संपत्ति थी, कहां गया हो? भारत स्वर्ग था, नरक किसने बनाया? तो शरीर को हम 3 दफा खिलाते कम से कम, तो शरीर माना 5 विकार। क्रोध को 3 दफा खाना मिलेगा तो आपको छोड़ के जाएगा? नहीं, इसलिए क्रोध नहीं जाता है। इसका मतलब खाना नहीं चाहिए, से नहीं, खा लो, शरीर को भी खिलाओ आत्मा को भी खिलाओ, तब देखना अपने आप। अगर बार बार उसको 3 दफा खिलाते हो तो मन आत्मा स्वस्थ है, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। इसलिए ये 2 तरीका चाहिए। इससे और भी फास्ट जाना चाहते हो आप, और एक है उसी के अंदर, जो मुरली आपने लिख के जेब में रखा, आजकल सबके पास मोबाइल है, सारा दिन में किसी का फोन आता है, सुनना पड़ता है, सुन लो, सुनते सुनते ये हाथ से निकाल के रखो, बाबा ने क्या कहा था वो पढ़ के सुनाओ, तो ज्ञान दान करो। सारा दिन में 10 लोगों को तो फोन करते हो, 10 लोगों को अगर आपके मुख से आज की मुरली के पॉइंट वर्णन करते हो तो शंख ध्वनि करते हो, अपने आप जो ज्ञान आपने वर्णन किया अपने आप चक्कर भी चलेगा, जो बाबा ने आज स्वदर्शन चक्र कहा, स्व का दर्शन चलेगा अंदर, मुझे बाबा ने क्या कहा था, तो अपने आप मनन चिंतन भी चलेगा। तो अगर मनुष्य देवता बनना चाहते हो, शंख और चक्र जरूर चाहिए, है ना? तो वो सिंबॉलिक देवताओं के हाथ में दिखाया, लेकिन आज हम मनुष्य देवता बनने जा रहे, जो हम आज प्रैक्टिकल करते हैं, तो मन सदा हर्षित रहेगा। धन चाहते हो, धन जो कमाते हो किसकी सेवा में लगाते हो? ईश्वरीय सेवा में। अगर श्रीमत के अनुसार अगर धन लगाते हो तो 1 का पदम गुना रिटर्न मिलता है। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, ये वर्षा अगर चाहते हैं, क्योंकि विधि है, गेहूं का बीज बोलो, कोई आप में से कहेगा भाई जी मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं गेहूं बोता हूं, चावल उगा देगा भगवान? उगा देगा? गेहूं का बीज बोलो, चावल उगेगा? नहीं। इसलिए जानना चाहिए, 3 प्रकार के बीज अगर संगम पर आप श्रीमत के अनुसार बोते हो तो ये 3 बीज आपका 1 का पदम गुना फल भविष्य में देगा। 3ों में से अगर आपने किसी भी कारण बीज बोया नहीं तो फल कैसे उगेगा? बिना बीज का होगा? साइंस ने, भगवान ने ऐसे कोई विधि नहीं बनाया, बिना बीज बोए कुछ उग जाए, और गेहूं का बीज बोलो तो चावल उग जाए? नहीं। तो ये विधान है, इस विधान को जानना चाहिए। इसलिए थोड़े समय के अंदर ये बहुत जानने की जरूरी है। कभी कभी हम कहते हैं योगी करते रहते हैं, सिर्फ सेवा ही करते हैं, तन की, धन की, मन की सेवा पता ही नहीं, एक कोई किया, एक करने से तीनों हो जाएगा? नहीं, तीनों बीज बोना चाहिए। ओम शांति।